अनंत मूर्तिधारी भगवान जिस मूर्ति में, जिस मूर्ति से इस अजमाया का प्रकाश करते हैं, जहाँ ये प्रकाश हुआ अजमाया का, उसी मूर्ति से ये इन्होंने इच्छा की। तो अजमाया शब्द का अर्थ हम करते हैं निश्चल कृपा, अचल कृपा। न गच्छति न चलती इति अगा निश्चला सा चासौ माया कृपा चेति अजमाया ताम उपाश्रित आधिक्येन प्रकटीकृत। तो अपार करुणामय श्री भगवान की कृपा को प्राप्त करना, ये भाग्यवानों के भाग्य में हो तो जाता है, क्योंकि वो कृपा बड़ी सरल भी है, परंतु स्थायी भाव से कृपा अचल होकर के रह जाए, ये सबके लिए सहज नहीं होता। तो कहते हैं कि ये भक्तिनिष्ठ कर्म योग आदि अनुष्ठान में भगवत कृपा के द्वारा संभव है, इंद्र पद मिल जाता है, ब्रह्मा का पद मिल जाता है, किंतु हमेशा के लिए नहीं। पुण्य क्षय होते ही फिर आना पड़ता है। योगी ज्ञानी आदि निश्चित ही भगवान की कृपा से मुक्त हो जाते, पर वो कृपा का भोग नहीं कर पाते। संसार की मुक्ति का अर्थ ही है सच्चिदानंद स्वरूप सिंधु में बिंदुवत लीन हो जाना। तो मुक्त पुरुष ज्ञानी योगी पुरुष जब अपने ज्ञान का फल तत्व ज्ञान पाते हैं, तो क्या होता है, जो सच्चिदानंद रूपी स्वरूप सागर है उसमें बूंद की तरह जाकर मिल जाते हैं, सागर बन जाते हैं। तो इसलिए भगवान की कृपा से किसी को सेवा अधिकार नहीं मिलता। अतएव भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष भोग वे नहीं कर सकते, अचल होकर ही रहती वो कृपा। किंतु भगवान ने अपनी कृष्ण लीला में जिन पर कृपा की, उन पर ये अजमाया ही की, निश्चल कृपा की। और अवतारों में सब में भगवान की कृपा तो समान ही है, पर इस प्रकार भगवान ने दिखाया नहीं अपनी कृपा का अगमाया स्वरूप। बोले औरों की बात छोड़ दो, पूतना जी जो हैं ये तो जहर लगा करके मार नहीं आई, पर पूतना को मार करके उन्होंने जननी की गति दे दी। तो अगमाया का प्रकाश किया, भगवान अपनी अचला कृपा दे दी। तो जो श्री कृष्ण इस अगमाया को लेकर जगत में अवतीर्ण है, उनके इस कृपा भंडार में मानो अगमाया के सिवा कुछ ही नहीं। वे जिस पर कृपा करते हैं वो अगमाया ही करते हैं, निश्चला ही करते हैं। तो श्री कृष्ण ने अपनी समस्त लीलाओं में अजमाया का वितरण किया, इसमें कोई संदेह नहीं। किंतु रासलीला में तो उन्होंने अजमाया के भंडार का दरवाजा ही खोल दिया, लुटा दिया। इसीलिए उन्होंने रासलीला में न पार में ये हम निर्वज संजुजाम इत्यादि श्लोकों में गोपियों के लिए कहा कि ब्रह्मा की लंबी आयु पर्यंत भी यदि मैं प्रयत्न करूं तो तुम्हारे प्रेम का बदला नहीं चुका सकता, तुम्हारा प्रेम सदा के लिए मुझे ऋणी बना के रखेगा। तो गोपियों पर कृपा करने जाकर मानो भगवान ने अपनी कृपा का भंडार निशेष कर दिया और फिर ऋण स्वीकार कर लिया। अपनी कृपा का सारा भंडार दे करके भी कहा भी ऋण उतरा नहीं, ऋण तुम्हारा रही गया, तो ऐसी अगमाया भगवान ने कहां प्रकट की, बोले अपने गीता के वाक्य को बदल दिया। यहां भगवान, भगवान की प्रतिज्ञा ये था, माम प्रपद्यंते तांसते भजाम्य, प्रतिज्ञा है क्योंकि न पा रही है हम निर्विध संजुजाम। अरे सेवा का बदला चुका सकते वैसा ही भजन कर सकते भजन के बदले में, तो ये कहने की क्या आवश्यकता होती कि ऋणी रह गया मैं। तो इस प्रकार से भगवान अपनी अगमाया का निष्फला कृपा का प्रकाश करते। फिर दूसरे इसका एक दूसरे प्रकारांतर से इसके अर्थ का स्वाद लिया जा सकता है। अगेशु भावरेशु वृक्षलताधिश्वती या माया कृपा सा अगमाया, तामुपाश्रिता भगवान रंतु मनस्य करे। कदे श्री भगवान ने जितनी लीलाएं जहां जहां अवतीर्ण हुए वहां कृपा का संभार लेकर ही अवतीर्ण हुए। किसी लीला में वृक्ष लताओं को भी कृपा दान दे करके कृतार्थ किया। ये अयाचित कृपा वर्षण बड़ा अद्भुत है। संतोवतारा सहस्रशः पुष्करनाभस्य सर्वतो भद्रा कृष्णादन्यः पूर्वा लतास्वपि प्रेमदो भवति। कहते हैं कि भाई पद्मनाभ, भगवान ने हजारों हजारों अवतारों में और महाशक्ति का प्राकट्य किया, हजारों अवतार हुए और हजारों अवतार हजारों प्रकार के महाशक्तियों से परिपूर्ण, तो श्री कृष्ण के बिना ऐसा कौन हुआ जिसने दुख बता दी पर भी प्रेम प्रेम सिंचन किया, उनको भी प्रेम रस से नहला दिया, अभिषेक कर लिया। दास लीला में जब भगवान आगे आगे अंतर्धान हो जाते हैं तो श्री गोपांगनाए बनकर उनको ढूंढते थे, तब उनके कृपा स्पर्श जनित प्रेमानंद से पुलकित वृक्षलताओं को देखकर उन्होंने देखा कि ये वृक्ष बोल ये पुलकित क्यों हो रहे हैं, इनसे रोमांच क्यों हो रहा है। तो रोमांच इसलिए हो रहा है वृक्ष के लताओं के शरीर में कि श्याम सुंदर उनके स्पर्श कर रहे हैं। तो श्याम सुंदर के स्पर्श से और ये देवानंद से पुलकित हो गए हैं वृक्षलता, ये देख करके शिवो पंगनाओं ने पृथ्वी के मारता बाहु मक्या शिक्षा वनस्पते मूलम तत्कर्गत पृष्ठा निवृत्त पुलकांड कहने लगी कि देखो देखो ये सचू ये वृक्ष शाखावलंबनी ये लता है वृक्ष की शाखा का अवलंबन करके पहली हुई रूप निश्चय श्याम सुंदर से परस्परता सौभाग्य प्राप्त कर सकते भगवान से खुल गए। इसीलिए तो ये पुलकित होकर किंतु गोपी भाव से श्री कृष्ण की सेवा प्राप्ति के लालसा से जो लोग रागानुगा भक्ति करते हैं वे न तो परब्रह्म में विलीन होते हैं और नवे देव क्रियेगा भी देह धारण करके ब्रह्मांड में रहते हैं। तो उनकी साधना की जो सिद्धि है वो गोपी देह से कृष्ण की सेवा की प्राप्ति में ही परिवर्तित होती है। तो गोपी गोपी गर्भ से जन्म ग्रहण करके वे लोग नित्य सिद्ध गोपियों का संग प्राप्त करते हैं और उसके बाद भगवान की नित्य सेवा में वे अधिकारी होकर संलग्न होते हैं। तो ये श्री कृष्ण का धाम है, ये धाम, ये रास धाम, ये लीला धाम, ये ब्रह्मांड से बहुत दूर है। इसकी लोक कल्पना भी है, गोलोक ब्रजलोक, और लोक कल्पना जहां नहीं है वहां भी ये ब्रह्मांड से बहुत दूर है, क्योंकि ब्रह्मांड के जो कुछ साधन सामग्री सामान है इसमें नहीं, यहाँ का काम वहाँ काम नहीं, यहाँ क्रोध वहाँ क्रोध नहीं, यहाँ की चीज वहाँ की चीज नहीं, यहाँ से बिल्कुल बिल्कुल बखरी, इससे बहुत दूर, इस जगत से बहुत दूर ये प्रेम का धाम है। इस जगत में प्रेम धाम नहीं तो प्रेम धाम बहुत दूर। तो इस रागानुगा भक्ति वालों को इस ब्रह्मांड में नहीं रहना पड़ता, ये बहुत दूर लीला धाम में पहुंच जाते हैं, ये ब्रह्मांड बहुत पीछे बहुत दूर अनेक अनेक स्तरों के पीछे रह जाता है। और इसको वैसे लोक दृष्टि से देखें तो अनंत ब्रह्मांड और माया समुद्र की बात तो है, कारण समुद्र, उसके बाद है सिद्धलोक, उसके बाद है परव्योम, वहां अनंत वैकुंठ की स्थिति है, और उसके बाद है भगवान का लीला धाम ब्रजलोक। तो वहां जाना ये अपनी इच्छा से कोई जा सके साधना से ये नहीं हो सकता। तो गोपी भाव से की प्रेम सेवा करने का लोभ जिनके मन में जागृत हो जाता है और जो गोपियों के समान अपने को बना लेते हैं वे ही इस साध्यातीत प्रेम धाम में पहुंच सकते हैं और लोग नहीं पहुंच सकते। इसलिए श्री भगवान जब लीला प्रकट करते हैं तो उनकी सेवा प्राप्ति के लिए उत्कंठा रखने वाले साधक योग माया की सहायता से वहां प्रकट लीला में गोपी गर्भ से प्रकट होते हैं और नित्य सिद्ध गोपियों के संग की महिमा से भाव परिपक्व होने पर रास लीला में श्री कृष्ण के साथ मिलित हो जाते हैं। ये विषय उसमें आवेगा कि इनमें जो गोपियां थी इनमें कुमारियां भी थी, अविवाहिता भी थी, तरुणी भी थी, तो इन सब के अलग अलग भाव हैं। तो ये भी प्रपंचातीत भगवान का धाम प्रेम धाम, तो ये गति विहीन है, कृपा के बिना यहां कोई जा नहीं सकता। अपनी चाल से चलकर भगवान के प्रेम धाम में कोई नहीं पहुंचता, वो तो बस अपने अंदर इस प्रकार की जिसके अंदर भावना जागृत हो गई उसके सामने लोहे की भांति चुंबक के सामने आता जलो आता है, वैसे भगवान की कृपा आ जाती है। तो अगमाया तो फिर कहते हैं कि भाई अपार अपार करुणा धारा के समुद्र हैं भगवान, और निरंतर उनकी कृपा धारा विश्व को प्लावित करती रहती है। परंतु कृपा धारा को धारण करने की शक्ति वाले भी तो होने चाहिए ना, उनकी कृपा के ग्राहक भी तो हूं, कृपा तो उनकी है। तो कोई भी ऐसा दयालु हो और परम उदार महापुरुष हो जो अकातर दिन रात देता ही रहे और जिसके देने में कभी किसी प्रकार की कमी ना आवे, नित्य प्राचुर्य जिसका बढ़ता रहे, देने में जिसका देनापन और देने के वस्तु नित्य बढ़ती रहे, ऐसे भगवान उदार शिरोमणि। लेकिन कोई दरिद्र उसके धन को लेकर रखे भी कहां, रखने को जगह नहीं, उसकी उस टूटी झोपड़ी में वो अगर धन को लाकर रख दे तो चोर उखेर ले जाएंगे। तो भाई दाता का दान प्राप्त करने पर भी ग्राहक के लिए लेने वाले के लिए उसकी रक्षा होनी बड़े कठिन है। तो भगवान की अयाचित कृपा बहुत दफे बहुतों को मिल भी जाती है, परंतु उसको रख नहीं सकते, खो देते हैं, बेच डालते चोरों के हाथ। ये सारे भोग तो चोर ही है ना। तो भगवान की कृपा को भोग चोरों के हाथ बेच डालते हैं, घर उनके है नहीं से रख ले। तो संसार आसक्त जी भगवान की कृपा पाते हैं तो दुर्भाग्यवश उसे खो देते हैं, तो या तो चोर आ जाते हैं, वैसे संग मिलता है बहुत खराब, और या धर्म ध्वजी सिद्ध पुरुष उनको मिल जाते हैं, बने हुए सिद्ध। ऐसे लोग हाथ में जहां गिरे ये फिर दूर से दूर ले जाके फेंक देते हैं उनको, उनको कृपा सारी खोई जाती। और कोई अगर आगे भी बढ़ता है तो क्या होता है, एक बड़ा तूफान आता है, उस तूफान में फंसकर वो संसार सागर में गिर पड़ते हैं। वो तूफान क्या है, वो तूफान है मान प्रतिष्ठा कीर्ति की आधी, रक्षा होनी बड़ी कठिन। बोलिए तो भगवान के बड़े भक्त हैं ये, भगवान के बड़े प्रेमी हैं जी, भगवान तो इनके वश नहीं हो। अब चाहे वश में हुए नहीं, कुछ कृपा प्राप्त हुई थी, अब वो कृपा इस प्रकार से खोई जाने लगी। तूफान आ गया, आंधी बड़े जोर की आ गई, इस आंधी में वे बस पूजा प्रतिष्ठा आदि की प्राप्ति में ही इन्हीं के गुलाम बन जाते हैं, कृपा का आधिपत्य उठा उठा के दूर फेंक देते हैं। नहीं चाहिए कृपा हमको, नहीं चाहिए हमको, तो मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, नाम चाहिए, कीर्ति चाहिए, पूजा चाहिए, भगवान के आसन पर बैठ जाते। किंतु वो कहते हैं रासलीला में भगवान ने जिस कृपा का प्राकट्य किया वो तो बड़ी चमत्कारमयी लीला। इस कृपा को जिसने पाया वो कभी कृपा से फिर वंचित नहीं हो सका, निश्चरा कृपा। तो भगवान की जो कृपा विकृत होती है उस कृपा में ऐसी कोई शक्ति रहती है कि वो शक्ति जिसमें आ जाती है तो वो कृपा ही कृपा प्राप्त व्यक्ति को कृपा ग्रहण करने की और कृपा की रक्षा करने की शक्ति दे देती है। तो गोपांगनाओं ने उस शक्ति को प्राप्त किया और उनके लिए भगवान ने वो शक्ति दी, तो योग है, तो इसका नाम है योग माया उपाश्रता। युग ऐश्वर्यम तदयुक्ता या माया कृपा ताम उपासता भगवान रंतु मनश्चक्रे। ये दूसरा कहते हैं कि भगवान का योग शब्द का अर्थ है भगवान का ऐश्वर्य, और ऐश्वर्युक्त जो कृपा है उसका नाम है योग माया। योग माने ऐश्वर्य, माया माने कृपा। तो श्री कृष्ण की लीला में ये ऐश्वर्युक्त कृपा ही नाना प्रकारों से अपना काम करती है। पूतना राक्षसी को माँ की गति दिए वहां से लेकर, और जितनी भी लीलाएं भगवान ने की वहां वहां पर ऐश्वर्य शक्ति ने प्रकट होकर योग माया ने, योग माने ऐश्वर्य, माया माने कृपा, ऐश्वर्य कृपा ने प्रकट होकर सारा काम यूं बना दिया कि कहीं किसी प्रकार की अड़चन आई ही नहीं, मानो पहले से बना बनाया तैयार। उस ऐश्वर्य युक्त कृपा का रासलीला में दिखता है पूर्ण विकास प्रथम से अंत तक। श्री भगवान ने जब अनुरागनी ब्रजबालाओं पर कृपा करके उनके साथ रासलीला करने की इच्छा की और उनको अपने अपने घरों से वन भूमि में बुलाने के लिए वंशी नाद किया, तो भगवान ने ये जो वंशी नाद किया कृपा करके, ये अगर सभी सुन लेते तो भगवान के पास दो इन सब का आना ही मुश्किल हो जाता। तो भगवान की कृपा ने वहां ऐश्वर्य प्रकाश करके वंशी नाद केवल सुनाया गोप रमणियों को ही, बजी वंशी सबके लिए, लेकिन उनके कानों को अवरुद्ध कर दिया ऐश्वर्य शक्ति ने। तो और यदि सबको सुनता तो एक आफत और होती, ये वंशी तो सबको मोहित करने वाली है ना, तो वंशी नाद को सुन करके सभी घर वाले चल पड़ते, सारा वृद्धि वहां लौट पड़ता, तो फिर ये लीला होती है नहीं। तो ऐश्वर्य प्रकाश हुआ, अच्छा फिर क्या हुआ कि ये जब ये पतिपत्नियों ने निवारण किया, रोका, तो रोकते ही फिर ऐश्वर्य शक्ति ने काम किया कि रोका तो सही, फिर वो जाने लगी तो भूल गए और अपने अपने घरों को वापस लौट आए, निस्तार ही चले चलते, पीछे पीछे दौड़ते तो काम नहीं बनता। और राजस्थली में तो योग माया ने, ऐश्वर्य शक्ति ने पूर्ण प्रकाश किया। ये भगवान ने रास नृत्य में प्रवृत्त होकर के और प्रत्येक गोपी का हाथ धारण कर लिया, दो दो के बीच में एक एक कृष्ण, दो दो के बीच में एक एक कृष्ण। तो अनंत गोपिकाओं में अनंत कृष्ण रूप से प्रकट होकर के भगवान ने गोपिकाओं की मनोवांछा पूर्ण की। कृत्वा तावंतमात्मानं यावत् गोपयोषितः, जितनी गोपांगनाएं थी रासस्थली में उतनी मूर्ति प्रकट करके भगवान ने रास नृत्य किया। ये ऐश्वर्य युक्त कृपा का पूर्ण विकास। अब और आगे वो कहते हैं कि योग माया शब्द पर विचार करने पर भगवान की लीला के और वैभव भी सामने आते हैं। योगे आत्मना सह मिलने या माया यज्ञ पत्न्यादि शिव वंचना तामुपाशता उपाशतोपि भगवान रंतु मनश्चक्रे।